नमस्कार, मेरा नाम है धार्मिक पटेल और आप सुन रहे हैं IBPS गुरुजी। ये एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 एपिसोड कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो एक बार वो सुन सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में। ये इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स का सेकेंड पार्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था RBI इन द न्यूज़। तो अब हम अदर रेगुलेटरीज बॉडी इन द न्यूज़ देखेंगे और सम अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसका गठन हुआ था अप्रैल 12, 1988 को, एस्टैब्लिशमेंट होता है और स्टेचुटरी स्टेटस उनको मिलता है 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन है मधुबाई पूरी बुच, जो एक IAS ऑफिसर है। सो अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सेबी रिसेंटली इश्यूड डायरेक्टिव्स फॉर सब KYC यूजर एजेंसी टू प्रोवाइड आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस टू द क्लाइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ नो योर कस्टमर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KYC। अगली न्यूज़ है, सेबी हैज़ एक्सटेंडेड द डेड लाइन बाई 3 months, दैट मीन्स टू नवम्बर 1, 2022, commencing the validation of all KYC records by the KYC registration agencies, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे KRA। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी हैज़ डिफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द नॉमिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड होल्डर्स टिल October 1, 2022। यानी जो नॉमिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड होल्डर्स के जो इम्प्लीमेंटेशन के रूल है उसको डिफर्ड कर दिया गया October 1, 2022 तक। नेक्स्ट है, सेबी हैज़ इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ, सेबी ने भी पेनल्टी लगाई है, 3 लाख की पेनल्टी लगाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे फॉर वायलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन रेगुलेशन 2018। नेक्स्ट है, 11 करोड़ की पेनल्टी लगाई है टोटल 8 एंटिटीज पे फॉर वायलेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड रॉन्गफुल शेयरिंग ऑफ डेटा बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिदम ट्रेडिंग। अगली न्यूज़ है, ₹30 लाख का फाइन लगाया गया है 5 एंटिटी पे, इंक्लूडिंग PGIM असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीत मेनन फॉर फ्लॉटिंग म्यूचुअल फंड नॉर्म्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इंटर स्कीम ट्रांसफर्स। नेक्स्ट है, ऑन कोटक महिंद्रा बैंक ट्रस्टी कंपनी पे भी इन्होंने पेनल्टी लगाई है। नीलेश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक म्यूचुअल फंड, लक्ष्मी अय्यर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एंड फॉर अदर ओवर दी फंड्स हाउस एक्सपोजर टू सिक्योरिटी इश्यूड बाय द SL ग्रुप, द टोटल पेनल्टी इम्पोज ऑन कोटक ट्रस्टी एंड 6 अदर नोटिसेस वर्क्स आउट 1.6 करोड़। एक और पेनल्टी लगाई है 10 लाख की बजाज हिंदुस्तान सुगर लिमिटेड पे फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग क्लोजर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्टेन डिस्टिलरीज एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेबी की कुछ मिसलेनियस न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप द सिंगल एंटिटी फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये कौन है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने डिसाइड किया कि एक सिंगल एंटिटी बनाई जाएगी जहां जिसके तहत होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सो FSIB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। नेक्स्ट है, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका फॉर्मेशन होता है 1999 को और हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चेयरपर्सन देबाशीष पांडा है, जो भी एक IAS ऑफिसर है। और न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले न्यूज़ है, IRDAI हैज़ परमिटेड द जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एड ऑन्स टू विच टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सो मोटर इंश्योरेंस में IRDAI ने परमिट किया है, मतलब ग्रांट दे दिए कि वो लोग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एड ऑन्स डाल सकते। नेक्स्ट है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज डेवलप्ड अ नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सेटल हेल्थ क्लेम्स इन एसोसिएशन विद IRDAI। यानी ये NHA जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया है, किस लिए डेवलप किया है, टू सेटल हेल्थ क्लेम्स इन एसोसिएशन विथ IRDAI। नेक्स्ट है, IRDAI हैज फॉर्म्ड टू टास्क फोर्स टू स्टडी द इश्यूज ऑफ नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फेस इन री इंश्योरेंस सपोर्ट। IRDAI ने फॉर्म किया है दो टास्क फोर्स को जो स्टडी करेगी और फिर उसके बाद जो स्टडी करेगी इश्यूज को नॉन लाइफ इंश्योरेंस के और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो री इंश्योरेंस के सपोर्ट में फेस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है स्कीम्स के बारे में कि मतलब इस महीने के अंतर्गत जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, शॉर्ट में बोल रहे हैं PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। ये स्कीम लॉन्च हुई है 29 जून 2020 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो प्रहलाद सिंह पटेल है, इंडस्ट्रीज अंडर द आत्मनिर्भर अभियान। सो ये जो PMFME स्कीम है वो 29 जून 2020 को लॉन्च हुई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिस स्कीम का एम है फॉर्मलाइजिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड सेलिब्रेटिंग दैट टर्मेंडियस सपोर्ट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। अगली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च टू स्कीम फॉर सपोर्टिंग MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो पहली स्कीम का नाम है RAMP, रैम्प। रैम्प का फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। और दूसरी है CBFTE का फुल फॉर्म है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स। सबसे पहली रैम्प स्कीम की बात करते हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो रैम्प किस लिए लॉन्च की गई, तो उसका एम रहेगा एट स्केलिंग अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSMEs विथ इम्पैक्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग MSME स्कीम्स। रैम्प विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलाबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज ओवर 5 ईयर्स। सो रैम स्कीम का फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम्स। किसके साथ मिलकर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, तो 6,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये किस लिए है, तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSME के लिए है और एग्जिस्टिंग MSME स्कीम को एनहांसमेंट करने के लिए भी है। दूसरी जो स्कीम है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर, जिसका एम रहेगा टू एनकरेज MSME टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। दिस विल एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन MSME इन द ग्लोबल वैल्यू चेन एंड हेल्प देम रियलाइज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगली तीन स्कीम जो लॉन्च हुई है, टू स्ट्रेंथन द MSME इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और तीन स्कीम लॉन्च हुई है MSME जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को स्ट्रेंथ करेगा। पहली स्कीम का नाम है द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। दूसरी स्कीम का नाम है असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम, असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम। अगली न्यूज है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। ये तीन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है MSME के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसको PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जो लॉन्च हुई है 29 जून 2020 को। ये एक्चुअली रिपीट हो रही है, हमने सबसे पहली जो कवर की ये वही लाइन है, ठीक है, तो इसके स्किप कर रहे हैं। ओके, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अनाउंस किया कि वो एक ब्रेकफास्ट स्कीम रोल आउट कर रहे हैं अपने स्टेट के स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जो उन स्टेट में स्कूल स्कूल्स के चिल्ड्रन है। और स्कूल का स्टैंडर्ड कौन सा, क्लास 1 टू 5। So Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has announced to roll out a breakfast scheme for state-run schools children of classes 1 to 5. Next, the government has launched Cooking Coal Mission. Government ne kya launch kiya? Cooking Coal Mission. The All India production of raw cooking coal in 2020-21 was 44,787 metric ton. The target is now to produce 140 million tons of raw cooking coal by 2030. According to the National Steel Policy 2017, to achieve steel making capacity of 300 metric ton per annum by 2030, approximately 170 metric ton of cooking coal will be required by 2030. Agla hai, government has formulated a national action plan for mechanized sanitization ecosystem, jisko short mein bola jayega Namaste scheme. National Action Plan for Mechanized Sanitization Ecosystem, Namaste Scheme, for clearing of sewers and septic tanks. Kis liye? To sewers or septic tanks ke clear karne wale logo ke liye. The scheme is a joint venture of the Department of Drinking Water and Sanitation, the Ministry of Social Justice and Empowerment, jo hai Dr. Virendra Kumar, and the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri. Ugly news, the flagship scheme of the Women and Child Development Ministry, Smriti Zubin Irani, jinhone launch kiya Beti Padhao, Beti Bachao, Beti Bachao, Beti Padhao, will be now extended across the country and launch in 2015. Yani, ye jo scheme thi, ye pure country mein ab launch kar di gayi hai, aur ye scheme initially pilot phases mein 2015 mein launch ki gayi thi. Agli hai, which ministry has issued detailed guidelines for the Mission Shakti scheme that came into effect from April 1st, 2022. So, Ministry of Women and Child Development, Smriti Zubin Irani ne, ye iske liye detailed guidelines launch ki gayi hai. Next, a mobile electric charging platform has been launched along with the PHY Digital by Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises MSME Narayan Tatorane, aur jiska jis concept wo platform ka naam hai RepoSpay. So mobile electric charging platform RepoSpay has been launched along with the PHY Digital by the Union MSME Minister Narayan Tatorane. Next, who has launched NDDB Merida Limited, a wholly owned subsidiary company of National Dairy Board Development? So, kisne launch kiya hai NDDB Merida Limited? To Parshottam Rupala, jo hamare vartaman Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying ka portfolio dekh rahe hain. Ugly news hai, Union Home Minister Amit Shah has inaugurated several projects at National Forensic Science University in Gandhinagar, Gujarat for smart policing, including e-FIR system, integrated command and control center called Trinetra. So, Trinetra kahan launch hua hai? To Gujarat mein launch hua, Gandhinagar mein. Several projects ke saath Amit Shah ne kahan launch kiya? To National Forensic Science University in Gandhinagar, Gujarat pe launch kiya for smart policing including EFIR system. So EFIR system kahan launch hua? Gujarat mein launch hua. Next, the 13th edition of the Agriculture Census has been successfully launched by Union Minister of Agriculture Narendra Singh Tomar with an aim to provide information on a variety of agriculture parameters at a relatively minute level. Ugly news is the Union Ministry has amended certain rules. Union Home Ministry has amended certain rules related to the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, allowing Indians to receive up to 10 lakh in a year from relatives staying abroad without informing the authorities. The earlier limit was 1 lakh. The individual will now have 90 days to inform the government instead of 30 days earlier. सो ये थे आज का एपिसोड. आज के एपिसोड में हमने कवर किया मिसलेनियस रेगुलेटरीज बॉडी के इंफॉर्मेशन और सम स्कीम्स जो लॉन्च हुई है इस महीने के अंतर्गत. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आपको मुझे इंस्टाग्राम की आईडी IBPS_गुरुजी पे डीएम करना रहेगा, और ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।